मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज अपन आईएएस 2022 की तैयारी के 12वें एपिसोड के अंतर्गत कुछ तथ्यों पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले दो तीन समाचारों को आइए देख लेते हैं। पहली बात तो यह कि COP26 समाप्त हो गया है। मैं लगातार आप सबको बताते आ रहा हूं कि इस पर ढेर सारी बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी, आपको बहुत सतर्क रहना है, सावधानी पूर्वक जो जरूरी बातें हैं केवल वे ही आपको याद रखनी है। और वैसे देखिए, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर प्री में कोई क्वेश्चन आया तो केवल उसकी संख्या एक होगी 100 में, अगर मेन्स में भी कोई क्वेश्चन आए तो संख्या एक ही होगी, और यदि आप उसकी मूलभूत बातें जान लेते हैं तो मान करके चलिए कि आप इन प्रश्नों को सही सही हल कर लेंगे। एक बात जो मैं यहां आज ऐड करना चाहूंगा इसी से जुड़े हुए प्रश्न से संबंधित, वो ये कि भारत का जो इसमें पूरा रोल रहा है बहुत ही पॉजिटिव रहा है, भारत खुलकर अपनी बात रखता रहा है। अंतिम जब मसौदा जारी हो रहा था तो भारत ने एक बदलाव कराया और कुछ लोग इसके लिए भारत की आलोचना भी कर रहे हैं, और आलोचना करने वाले में विकसित राष्ट्र भी हैं। देखिए, भारत ने क्या परिवर्तन कराया। जब अंतिम मसौदा जारी हो रहा था तो उसमें एक वाक्य का इस्तेमाल किया गया था, खासकर कोयला को लेकर के, है ना, कोयला से एनर्जी बनती है, और अगर आप कार्बन उत्सर्जन कम करना चाह रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आपको कोयले से एनर्जी बनाना बंद करना होगा। ठीक है, तो जो मूल मसौदा था उसमें था कि ये जो कोयले का जो इस्तेमाल है इसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए, मतलब कोयले का इस्तेमाल खत्म कर दिया जाए, ये शब्द इस्तेमाल किए गए थे। भारत ने अपनी बात रखी, बात रखने के बाद उस पर बहस हुई, काफी बहस हुई, और उसमें फिर जो परिवर्तन किया गया है, और आपके दिमाग में दर्ज होना चाहिए ये, उसमें परिवर्तन ही किया गया चरणबद्ध तरीके से कम करना। थोड़ा सा फर्क है, चरणबद्ध तरीके से खत्म करना। खत्म करने का मतलब है कि एक समय ऐसा आएगा जब कोयले का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा। कम करने का मतलब है कि धीरे 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 आप कम करते रहेंगे लेकिन बंद नहीं करेंगे। भारत ने यह परिवर्तन कराया, यानी कि भारत खत्म करने के पक्ष में नहीं था, कम करने के पक्ष में था, और इसे स्वीकार भी कर लिया गया। तो अब आप देखिए कि जब आप सीधे सीधे सोचेंगे तो लगेगा कि यार, जब तक कोयले का प्रयोग खत्म नहीं होगा तो कार्बन उत्सर्जन कैसे कम होगा। तो यहां भारत आपको प्रतिक्रियावादी दिखाई दे रहा होगा, है ना, कि नहीं नहीं वो बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं है जलवायु परिवर्तन को ठीक ठाक करने के मामले में। लेकिन दोस्तों, जब हम किसी भी चीज के बारे में निर्णय लेते हैं तो वो एकतरफा निर्णय नहीं हो सकता। भारत के लिए जो कोयला है एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है, एनर्जी का ही स्रोत नहीं है बल्कि दुनिया में जो कोयले का उत्पादन होता है, चीन उसका सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है और भारत दूसरे स्थान पर है, और हमारे पास कोयले के बहुत बड़े बड़े भंडार भी हैं। हम जो कोयले से जो एनर्जी पैदा कर रहे हैं, लगभग हमारी टोटल एनर्जी का आधे से भी अधिक भाग कोयला देता है। जो दूसरे सेक्टर हैं वो तो बहुत कम है, रिन्यूएबल एनर्जी से अभी हम काम कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा का कंट्रीब्यूशन हार्डली 2% के आसपास है क्योंकि वो बहुत ही खर्चीला है और उसका कच्चा माल भी हमारे पास नहीं है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, मतलब एक साल में कोयले की जो हम एनर्जी बनाते हैं वो लगभग 1,000 मिलियन टन के बराबर है, और इसमें से 300 से 400 मिलियन टन हम इंपोर्ट करते हैं। हम इंडोनेशिया से कोयला मंगवाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगवाते हैं, साउथ अफ्रीका से कोयला मंगवाते हैं, तो भारत बहुत बड़ा कोयले का इंपोर्टर भी है। इसके केवल यही बात नहीं है बल्कि कोयले के खदानों में हमारे कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितना रोजगार ये उपलब्ध करा रहा है हमारे देश के लोगों को। ऐसी स्थिति में आप अचानक कोयले को खत्म करने का निर्णय कैसे लेंगे? जब तक कि हमारे पास एनर्जी के दूसरे सोर्स नहीं होंगे तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी का संबंध सीधे सीधे आर्थिक गतिविधियों से है और आर्थिक गतिविधियों का सीधा संबंध विकास से है, रोजगार से है। तो भारत ने उसमें यह परिवर्तन कराया है। चीन भी इसी श्रेणी में आता है, चीन की भी जो एनर्जी की जो जरूरतें हैं वो कोयला क्षेत्र सबसे ज्यादा पूरा करता है। तो यहां जो इंपॉर्टेंट बात इसके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि कोयला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से। भारत के संदर्भ में भारत में कोयले की क्या उपयोगिता है, और सब ज्यादा इंपॉर्टेंट बल्कि इससे यह है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा की निर्भरता कोयले पर कम करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या किया जा रहा है, और क्या और किया जाना चाहिए। जैसे एक बात आजकल एडिटोरियल में काफी पढ़ने को मिल रही है कि जो टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, कोयले से ही आप एनर्जी बना रहे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी आ गई है, हम उन टेक्नोलॉजी को ले आए, पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करें, लेकिन उसके लिए फिर कैपिटल चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपनी इस बात को यहीं समाप्त करना चाहूंगा कि भारत की जो एनर्जी की जरूरत है उसमें कोयले का क्या रोल है और कैसे इसको रिप्लेस किया जा सकता है दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी से, इस पर आप सबकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, फिर चाहे एग्जाम में ये प्रश्न आए या ना आए। फ्रेंड्स, जो दूसरी खबर है कि कल मैंने आपसे बात की थी कि जो ईडी और सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनकी अवधि कार्यकाल जो बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी किया गया है, देखिए अभी आपके सिलेबस में है दोनों के दोनों, अभी अध्यादेश जारी कर दिया गया। आज अखबार में एक छोटी सी खबर है, ऐसी खबरें असल में सच पूछे तो ऑफिशियल मीडिया पे नहीं होती हैं और होनी भी नहीं चाहिए कि अब जो विरोधी पक्ष हैं, संसद का सत्र शुरू होने वाला है, इसका सामूहिक रूप से विरोध करने की योजना बना रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि क्यों योजना बना रहे हैं, तो इसके दो पॉइंट हैं, यहां से फिर समीक्षात्मक बात शुरू हो जाती है। पहला तो ये कि जब संसद सत्र शुरू होने ही वाला है कुछ ही दिनों के बाद, तो ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ी कि आप ऑर्डिनेंस जारी करें, आप एक्ट ले आते? और सच पूछे तो ये एक तरह से एक नैतिकता भी है कि या कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कि अगर संसद सत्र शुरू होने वाला हो तो उससे पहले ऑर्डिनेंस मत लाइए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं वो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी अवहेलना होती है। जो दूसरी बात है वो ये है कि इसके जरिए सरकार इन दोनों संस्थाओं पर अपना दबदबा कायम करना चाहती है, क्योंकि जो अफसर हैं, अगर उसके मान लीजिए कि बहुत ही बात मानने वाले अफसर हैं, उसके भक्त हैं, तो सरकार उनका इस्तेमाल करेगी। तो इन दो बिंदुओं को लेकर के कि इससे जो डायरेक्टर हैं वो अब उनको जरूरत इस बात की है कि भैया हमारा टर्म बढ़े, कार्यकाल बढ़े, तो कार्यकाल कैसे बढ़ सकता है, कार्यकाल तो तभी बढ़ेगा ना जब वो सरकार की बात माने, तो इस लिहाज से भी इसका विरोध करने का कि वो योजना बना रहे हैं, तो ये पॉइंट मुझे आपको बताना था। दोस्तों, हिंदी साहित्य की जो एक महान जो साहित्यकार हैं बन्नू भंडारी जी, उनका निधन हो गया, न्यूज़ में आपने सुना, आज के अखबारों में भी दिया हुआ है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने उनको सुना है, उनको पाठ करते हुए सुना है, उनके साथ थोड़ी देर की बातचीत भी की है जिस समय मैं दिल्ली में था, और हिंदी के बहुत ही महान साहित्यकारों में से इनका एक नाम है। और जब मैं पीएचडी कर रहा था तो इनका एक उपन्यास है महाभोज, जिसकी चर्चा आज अखबारों में है, उसको मैंने पूरा पढ़ा था और उसका विश्लेषण भी फिर मैंने अपने पीएचडी की थीसिस में की है। तो मित्रों, मैं आप सभी की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, आईएएस 2022 की तैयारी के अंतर्गत। दोस्तों, मैं फिलहाल आपसे ये बात कर रहा था कि बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में ना पढ़ें, लेकिन मेरी बात को आप लोग प्लीज गलत रूप में मत लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कम पढ़ें, बहुत कम पढ़ें, नॉट एट ऑल। जो सिलेबस है, सिलेबस को ध्यान में रखें और सिलेबस को ध्यान में रख करके उससे जुड़ी हुई चीजें बहुत ज्यादा विस्तार में जाकर के ना पढ़ें, क्योंकि आप जनरल स्टडीज के तहत पढ़ रहे हैं तो जो आपके पढ़ने का जो दायरा होगा वो कम होगा। फालतू की चीजें पढ़ने से बचें, मेरे कहने का यह मतलब है, क्योंकि कुछ मेल्स से मुझे इस बात का आभास हुआ कि शायद मेरी बात को इस रूप में लिया जा रहा है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि नहीं, कम से कम पढ़ें, कम से कम पढ़ें, कम से कम पढ़ें का क्या मतलब है। आपको ध्यान होगा कि मैं कहता हूं कि एक दिन में मिनिमम 6 आवर्स तो होने ही चाहिए, अगर आप 1 साल के अंदर एग्जाम देने का प्लान कर रहे हैं तो इसको आप इस रूप में लें। अखबारों के बारे में मैं बात कर चुका हूं, मैगजीन्स के बारे में मेरी बात हो चुकी है, अब मैं आता हूं सीधे सीधे जनरल स्टडीज की पुस्तकों के ऊपर। जनरल स्टडीज पर पुस्तकों की भरमार है पुस्तकों की। मैं आपको कोई नाम सजेस्ट करने नहीं जा रहा हूं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि 1-2 सब्जेक्ट को अगर मैं छोड़ दूं तो मुझे, मेरी दृष्टि में कोई ऐसा सीधे सीधे कोई किताब नहीं है जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करता हो। तो अब मैं टुकड़े टुकड़े में आपको कैसे बताऊं, मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूं, 1-2 दिन आप लगाइए, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण चीजों का चयन कर रहे हैं, किताबों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की पुस्तकें रखते हैं, आप उस दुकान पर जाइए, उस शॉप पर जाइए और शॉप वाले से सब्जेक्ट वाइज पूछे कि भाई मुझे इसकी किताब बताइए, वो आपको किताब दे देगा कि आजकल कौन सी किताबें ज्यादा चल रही, कौन सी अच्छी है, उनके पास जानकारी होती है। आप उन किताबों को लीजिए और थोड़ा वक्त उन किताबों के साथ बिताइए, देखिए कि उनमें जो चैप्टर्स आपके जरूरत की हैं वो हैं कि नहीं है, हैं तो उन्हें किस तरीके से लिखा गया है, वो आपके काम आ रही हैं कि नहीं आ रही है, उसकी भाषा आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। वो मना नहीं करेंगे, थोड़ी देर आप बकायदे उस किताब को पढ़ सकते हैं, पलट सकते हैं, और इसके बाद जो किताबें वो 3, 4, 5 बताएंगे उनमें से आप एक किताब सेलेक्ट कर लीजिए। और जब आप एक किताब सेलेक्ट कर लेते हैं तो अपने को फिर आप वहां तक सीमित रखिए, बहुत ज्यादा डरिए मत, इधर उधर भागिए मत, उस किताब को आप अपनी मूल किताब बना लीजिए, मूल किताब, जैसे रीढ़ की हड्डी है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो सब मैं इस किताब से पढ़ूंगा। हाँ, दूसरी किताबों से अगर मुझे कभी कोई जानकारी मिल गई, अखबारों से कोई जानकारी मिल गई, आर्टिकल से कोई जानकारी मिल गई, तो फिर मैं अपनी इस किताब में उसे ऐड कर लूंगा, लिख लूंगा। चाहे आप पेजेस लिख लिख करके उस किताब में जोड़ दें, या उसका जो मार्जिन, जो हाशिया होता है, आप वहां कुछ नोट कर दें, लिखें, और लेकिन इस किताब को अपनी मूल किताब मानकर चलें। बहुत ज्यादा इधर उधर भटकेंगे तो आपके दिमाग में तथ्यों के जो इमेज क्रिएट होने चाहिए, बनने चाहिए, वो नहीं बनेंगे। और अगर इमेज अच्छे नहीं बने तो मान करके चलिए कि एग्जामिनेशन में जो समय का दबाव होता है, उस दबाव में जो आपको आंसर लिखने होते हैं, वहां आप वैसा नहीं कर पाएंगे जैसा कि उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, आज मुझे आपसे केवल यही बात करनी थी। मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं रवि नारायण खपूरा बिहार से और उमाकांत वर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।